नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार बल। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। ईरान के ड्रोन हमले में संयुक्त अरब अमीरात में 3 भारतीय नागरिक घायल। अमेरिका ने ईरानी मालवाहक जहाज के 22 चालक दल सदस्यों में से 15 को छोड़ा। मध्य चीन के हुनान प्रांत में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 21 लोगों की मौत, 61 अन्य घायल। और ऑस्ट्रिया ने 3 रूसी राजनयिकों को जासूसी के आरोपों के चलते निष्कासित किया। रूस ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। अब समाचार विस्तार से। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर बिहार के गया पहुंच रहे हैं। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक मजबूत व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी होगा। वियतनाम के राष्ट्रपति आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल वे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति तो लाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। शाम को राष्ट्रपति तो लाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पिछले महीने वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उनकी ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जमैका के समकक्ष कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के बीच साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। ईरान के ड्रोन हमले के बाद कल फुजेरा तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अबूधाबी में भारतीय दूतावास ने कहा कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। एक रिपोर्ट।
सोमवार के हमलों ने 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद से हफ्तों से बनी शांति को भंग कर दिया। ईरान ने इस कदम को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि जलमार्ग में प्रवेश करने वाली प्रत्येक जहाज पर हमला किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया जिससे फुजेराह में एक प्रमुख तेल संयंत्र में आग लग गई। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि ईरान के संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाने की कोई योजना नहीं है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इन हमलों को हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि ये देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फुजेराह पर ड्रोन हमलों की खबरें ऐसे समय में सामने आई जब अमरीका और तेहरान के बीच युद्ध विराम वार्ता ठप पड़ी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
अमरीका और ईरान के बीच नई चेतावनियों और सैन्य कार्रवाइयों के दावों के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमरीका के जहाजों को निशाना बनाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उनकी ये टिप्पणी संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की खबरों के बाद आई है। एक रिपोर्ट।
अमेरिका की सेना ने जलडमरू मध्य में 7 ईरानी नौकाओं पर हमला किया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि जहाजों को नष्ट करने के अभियान में हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ईरान ने अभी तक इन दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये हमले अमेरिका द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम कहे जाने वाले अभियान का हिस्सा है। इस अभियान का उद्देश्य फंसे हुए जहाजों की सहायता करना और रणनीतिक जलमार्ग से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित कराना है। सेंटकॉम के प्रमुख ब्रैड कपूर ने कहा कि 87 देशों के जहाज मौजूदा तनाव में निर्दोष दर्शक बनकर फंसे हुए हैं। इस बीच ईरान का कहना है कि जल डमरू मध्य बंद है और उसने अमेरिका के विध्वंसक जहाजों पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं पूजा।
अमेरिका ने पिछले महीने रोके गए ईरान के मालवाहक जहाज के 22 चालक दल के सदस्यों में से 15 को छोड़ दिया है। अमरीकी सेना ने ईरानी ध्वज वाले जहाज तोस्का को 19 अप्रैल को ओमान की खाड़ी में ईरान के दक्षिण पूर्वी बंदरगाह चाबहार के तट पर नौसैनिक नाकाबंदी के तहत रोक दिया था। अर्धसरकारी समाचार एजेंसी तस्मीन ने भी छोड़े गए चालक दल के सदस्यों की ईरान पहुंचने की पुष्टि की है। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉक्टर भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर अदापा प्रसाद ने भाजपा की इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक जीत पर बंगाल और असम की जनता को बधाई दी। श्री प्रसाद ने कहा कि भाजपा की बंगाल में जीत भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। मध्य चीन के हुनान प्रांत में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 21 लोगों की मौत और 61 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। ये विस्फोट कल शाम लियुयांग स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुआ। बचाव कार्य के लिए 5 टीमों में से 480 से अधिक बचावकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें 3 बचाव रोबोट भी शामिल हैं। विस्फोट स्थल बारूद के 2 गोदामों के पास स्थित होने के कारण बचाव दल ने आसपास के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने बचाव प्रयासों के लिए विशेषज्ञों को घटनास्थल पर भेजा है। 3 रूसी राजनयिकों को जासूसी के आरोप के चलते ऑस्ट्रिया से निष्कासित कर दिया गया है। ऑस्ट्रिया की विदेश मंत्री बीट मेनेल रिसिंगर ने कहा कि पहले ही देश छोड़ चुके ये राजनयिक भवनों की छतों पर लगे कई सारे एंटीना का इस्तेमाल कर जानकारी जुटाने के लिए प्रयास कर रहे थे। रूसी दूतावास ने कहा कि ऑस्ट्रियाई अधिकारियों की यह नवीनतम कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित और विशुद्ध रूप से राजनीतिक रूप से प्रेरित और रसासर अस्वीकार्य है। ये उन घटनाओं की श्रृंखला में ताजा घटना है जिनमें व्यक्तियों पर ऑस्ट्रिया और जर्मनी की जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ऑस्ट्रिया ने 14 रूसी दूतावास कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया है। माली के सैन्य प्रमुख जनरल असीमी गोइता ने रक्षा मंत्री का पदभार संभाल लिया है। इससे पहले इस पद पर रहे जनरल की हत्या कर दी गई थी। देश में जिहादियों और अलगाववादियों विद्रोहियों के हमलों के कारण सुरक्षा संकट बना हुआ है। अलगाववादी अजवाद लिबरेशन फ्रंट और अलकायदा से जुड़े JNIM ने पिछले महीने की 25 तारीख को माली के शहरों और कस्बों में हमले किए। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने नाइजर और बुर्की फासो की सशस्त्र सेनाओं के साथ संयुक्त कार्रवाई कर जिहादियों और अलगाववादियों पर हवाई हमले किए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी की पराजय की 81वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 8 और 9 मई को यूक्रेन में एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की है। रूस ने चेतावनी दी है कि यदि कीव विजय दिवस समारोह में बाधा डालने का प्रयास करता है तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा। इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन कल आधी रात से युद्ध विराम का पालन करेगा और रूस की कार्रवाई का उसी तरह जवाब देगा। हालांकि युद्ध विराम की समाप्ति तिथि अभी तक निर्दिष्ट नहीं की गई है। मैक्सिको आज फ्रांसीसी साम्राज्य पर अपनी अप्रत्याशित विजय की याद में सिंको डी मायो उत्सव मनाएगा। वर्ष 1862 में जनरल इग्नासियो जराजोआ गोजा के नेतृत्व में प्यूबला के युद्ध में एक छोटी और कमजोर हथियारों से लैस मैक्सिकन सेना ने नेपोलियन तृतीय की श्रेष्ठ फ्रांसीसी सेना को परास्त किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। ईरान के ड्रोन हमले में संयुक्त अरब अमीरात में 3 भारतीय नागरिक घायल। अमेरिका ने ईरानी मालवाहक जहाज के 22 चालक दल सदस्यों में से 15 को छोड़ा। मध्य चीन के हुनान प्रांत में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 21 लोगों की मौत, 61 अन्य घायल। और ऑस्ट्रिया ने 3 रूसी राजनयिकों को जासूसी के आरोपों को चलते निष्कासित किया। रूस ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।